नमस्कार भारत, तारीख 6 मई दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सीरिया के एक शरणार्थी शिविर पर हुआ हवाई हमला, महिलाओं और बच्चों समेत 30 की मौत। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में बारिश और आंधी के चलते कई पंडाल गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद प्रशासन रात भर स्थिति से निपटने में लगा रहा।
कई यहाँ पर पंडाल ढह चुके हैं और कई लोग घायल हुए। सिद्ध बाबा के यहाँ पर भी पूरा पंडाल गिर चुका है।
लगातार घायल लोग भी आ रहे हैं, इनकी चिकित्सा सारी डॉक्टरों की टीम है और व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लौटाई सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के लिए पानी की ट्रेन। खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। तुर्की सीमा के नजदीक एक सीरियाई राहत कैंप पर हुए हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि इदलिब प्रांत में स्थित इस कैंप पर हमले के पीछे कौन है। हालांकि एक संवाददाता ने बीबीसी को बताया है कि स्थानीय लोग इस हमले के लिए सीरियाई सेना को जिम्मेदार मान रहे हैं। इस कैंप में अलेप्पो शहर से भागे हुए लोग रह रहे थे। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में भारी बारिश के दौरान पंडाल गिरने से मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। करीब 30 लोग जख्मी हैं। शहर में शिप्रा नदी के किनारे जारी सिंहस्थ मेले में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई पंडाल गिर गए थे। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निचले सदन के स्पीकर को निलंबित कर दिया है। वे ही राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ पर महाभियोग चलाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे थे। स्पीकर एडवार्डो कुन्हा पर स्वयं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। संघीय अभियोजकों का कहना है कि उनके पास एडवार्डो कुन्हा के सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास से संबंधित घोटालों में करोड़ों डॉलर रिश्वत लेने के पर्याप्त सबूत हैं। कुन्हा का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा,
respeito a Suprema Corte do país, obviamente que a decisão tem que ser cumprida. Eu tenho todo o respeito e apreço pela
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे चुनौती नहीं दूंगा। मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा और उम्मीद करता हूं कि कामयाब रहूंगा। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के स्पीकर पॉल रियान ने कहा है कि अभी वो पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। रियान ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन तब ही करेंगे जब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो ही उम्मीदवारी की दौड़ जीत रहे हैं। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति रह चुके जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके पिता बुश सीनियर ये साफ कर चुके हैं कि वो ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का 36 सालों में पहला पूर्ण महासम्मेलन आज से राजधानी प्योंगयांग में शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि पहले दिन देश के नेता किम जोंग उन का भाषण ही छाया रहेगा। प्योंगयांग में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक किम जोंग उन अपने भाषण में परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर जोर दे सकते हैं। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए करीब 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इन लोगों को एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा। राहतकर्मियों को डर है कि यदि हवा अपना रुख बदलती है तो इन लोगों को दोबारा आग में घिरना पड़ सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नजर रखने वाले संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सीरिया में एक शरणार्थी शिविर पर हुए हवाई हमले में बच्चों और महिलाओं समेत कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हैं। ये हमला उत्तरी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में इदलिब प्रांत के सरमादा के नज़दीक स्थित कामुना कैंप में बर्बाद हुए टेंट दिख रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये हमला सीरिया या रूसी लड़ाकू विमानों ने किया है। हालांकि इन रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। कैंप पर हुए हमले के एक चश्मदीद ने कहा,
غاتل الأطفال والنساء
ये बर्बर शासन, बच्चों और महिलाओं का कातिल असद, वो अपराधी और हसन नसरल्लाह, ईरान और रूस, देखो यहाँ देखो, ये सब महिलाएं और बच्चे हैं और कोई नहीं। देखो इन अपराधियों ने क्या किया है, इन बच्चों का क्या गुनाह था। इस्लाम कहाँ है, कहाँ है इस्लाम, कहाँ है दुनिया, कहाँ है ये सब, सब कहाँ है, वो सब झूठे हैं, कहाँ है सब, इस्लाम कहाँ है। हसन नसरल्लाह, बशर अल असद और ईरान, सुन लो, आप चाहे जो करो, हम अल्लाह के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, तुम सब चोर और कातिल हो। वहीं अमेरिका ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि कैंप में रह रहे लोग बेहद मुश्किल हालात में हैं और इन पर सैन्य हमले का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा,
There is no justifiable excuse for carrying out an airstrike against innocent civilians.
मासूम नागरिक जो पहले से ही हिंसा के कारण अपनी जान बचाकर भागे हों, उन पर हवाई हमले करने का कोई भी न्यायोचित बहाना नहीं हो सकता है। ये लोग इतने मुश्किल हालात में रह रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इन लोगों को निशाना बनाकर सैन्य हमले करने का कोई भी उचित तर्क हो ही नहीं सकता है। हवाई हमलों का निशाना बना कामुना कैंप तुर्की की सीमा से 10 किलोमीटर और सरमांदा से 4 किलोमीटर दूर है। रूस और अमेरिका के दबाव के बाद सीरियाई सेना और गैर जिहादी विद्रोही गुट एलेपो के इर्द गिर्द इलाके में अस्थायी संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गए थे। सीरिया में फरवरी से समूचे देश में संघर्ष विराम लागू है, लेकिन हाल के दिनों में हमले बढ़े हैं। खासतौर पर बीते 2 सप्ताह में एलेपो में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यदि ये हिंसा नहीं रुकी तो करीब 4 लाख और लोगों को तुर्की भागने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
सीरिया में शरणार्थी शिविर पर हमला।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख भारत का करते हैं, भारत में मध्य प्रदेश का, जहां उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान कल हुई भारी बारिश और आंधी के चलते कई टेंट गिर जाने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा प्रशासन रात भर स्थिति से निपटने में लगा रहा। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
उज्जैन सिंहस्थ में हुई भारी बारिश के साथ तेज आंधी ने सरकार के इंतजाम की पोल खोल दी। तूफान के चलते कई तंबू और पंडाल उखड़ गए और यही कई लोगों की मौत का कारण बना। स्थिति काबू से बाहर हो गई और मेला क्षेत्र में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। वहां मौजूद लोगों के लिए एक मुश्किल भरा वक्त था।
कई यहां पर पंडाल ढह चुके हैं और कई लोग घायल हुए। सिद्ध बाबा के यहां पर भी पूरा पंडाल गिर चुका है, वहां करीबन 10 से 15 लोग घायल हुए।
अंदर वाले बाहर आ सक रहे हैं ना, बाहर वाले अंदर जा सक रहे हैं और गाड़ियां पूरी फंस गई है, गाड़ियां निकल नहीं रही है।
तेज आंधी तूफान के बाद कुछ पंडाल गिर गए थे, लगातार घायल लोग भी आ रहे हैं, इनकी चिकित्सा सारी डॉक्टरों की टीम है और व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं।
सिंहस्थ मेला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को पूरी तरह से इलाज उपलब्ध कराया गया है। हालांकि वो इस पूरे मामले को बहुत ही हल्के रूप में ले रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।
जगह सामान्य है, कहीं पर मैं पूरा मेला क्षेत्र घूम के आ रहा हूँ, कहीं पर भी कुछ नहीं है। जो टेम्परेरी कुछ जगह टेंट या गेट गिरे हैं उसमें चोट किसी को नहीं आई है, बाकी सामान।
मौसम बिगड़ने की जानकारी मौसम विभाग ने पहले ही उज्जैन कलेक्टर को दे दी थी, इसके बावजूद स्थिति से निपटने के लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 24 घंटे मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, साथ ही उन्होंने घायलों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। हालांकि आज का दिन भी प्रशासन के लिए इम्तिहान वाला है, अमावस्या पर आज पर्व स्नान होना है और लगभग 25 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। शुरह न्याजी भोपाल।
सिंहस्थ कुंभ में प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने में लगा हुआ है। पूरा बुंदेलखंड इस समय सूखे और पानी की कमी से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वहां पानी की कोई किल्लत नहीं है। यही नहीं, राज्य सरकार ने केंद्र की ओर से भेजे गए पानी के टैंकरों से लदी ट्रेन को भी लेने से मना कर दिया है। पानी की इस सियासत पर लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पानी से भरे 10 टैंकरों को लेकर विशेष ट्रेन जब झांसी पहुंची तो उसे आगे जाने का सिग्नल नहीं मिल सका। ट्रेन को महोबा जाना था, जहां पानी की किल्लत पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है, लेकिन राज्य सरकार का कहना था कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी तब देखी जाएगी। राज्य के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया।
स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई जब हमें जैसी जरूरत लगी हम आपसे मंगा लेंगे, वो बिना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के एक ट्रेन भेज दी, तो अब सडनली आपके पास कोई ट्रेन भेजे कैसे, कोई व्यवस्था करेगा? व्यवस्था करेंगे फिर बोलेंगे उनको, फिर वो भेज दे।
नवनीत सहगल के मुताबिक केंद्र सरकार बिना किसी जरूरत और बिना किसी आग्रह के जबरन ये सहयोग दे रही है। हालांकि बुंदेलखंड में पानी की कमी और इससे लोगों को हो रही परेशानी कोई नई बात नहीं है, पिछले 3-4 सालों से ये चली आ रही है और इस साल ये संकट और गहरा हो गया है। लेकिन महोबा के डीएम विश्वेश्वर सिंह कहते हैं कि कमी के बावजूद लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है।
जब पानी अगर 200 मीटर पर पानी उपलब्ध है तो आप रेलवे स्टेशन से गांव की दूरी 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर दूर से लाएंगे कि 200 मीटर की दूरी पर 40 विलेज यहां के प्रभावित हैं, 40 विलेज में जो गांव का ट्यूबवेल है वहीं से तो पानी भर करके और प्रोवाइड किया जा रहा है गांव वालों को। भाई इनका ट्रेन आएगी तो रेलवे स्टेशन भी तो रहेगी।
दरअसल बुंदेलखंड इलाके के कुछ भाजपा सांसदों ने लातूर की तरह बुंदेलखंड में भी ट्रेन से पानी पहुंचाने की मांग की थी, जिसे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंजूर कर लिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे गैर जरूरी बताकर इसके औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
देखिए यह सच है ना कि बुंदेलखंड में सूखा है, आपदा से ग्रस्त है बुंदेलखंड, और आपदा में जो मदद मिलती है वो आपदा ग्रस्त लोगों तक पहुंचे किसका प्रयास होना चाहिए, सियासत नहीं। जब टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है तो रेल के वैगन से पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? पर राज्य की सरकार तो सियासत कर रही है, अगर बुंदेलखंड में सब कुछ ठीक है तो फिर सूखा कहाँ है?
वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बुंदेलखंड की समस्या पर लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय भाजपा और सपा दोनों ही राजनीति कर रही है। पार्टी नेता वीरेंद्र मदान राज्य सरकार पर बुंदेलखंड पैकेज के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हैं।
सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जब हमारी यूपीए सरकार थी स्पेशल पैकेज दिया गया था उस समय पीने के पानी की परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। उस समय प्रदेश सरकार जो भी थी यहाँ पे उन्होंने उसकी जगह उस पैसे को ऐसा अनाप शनाप खर्च किया, मंडी बनवा दी।
बुंदेलखंड इलाके में पानी की कमी न केवल जमीन पर दिख रही है बल्कि जमीन के भीतर भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी प्रयासों से भी 600 फुट नीचे तक खुदाई करने पर भी कई बार पानी नहीं मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन केंद्र का पानी ले या न ले, लेकिन कम से कम हालात की जानकारी तो सही दे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है अगर BBC पर है।
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी पार्टी AIADMK का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें मुफ्त दिए जाने वाले सामानों की पूरी फहरिस्त शामिल है। किसानों और छात्रों को मिलने वाले लोन पर छूट से लेकर महिलाओं के लिए मोपेड आधी कीमत पर, और यही नहीं शादी से पहले लड़कियों को सोने की गिन्नी भी देने का वादा जयललिता ने किया है। इस विधानसभा चुनाव में जयललिता के पास अपने को-स्टार और गुरु एमजी रामचंद्रन के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है। वहीं सत्ता विरोधी लहर का डर भी उन्हें कहीं ना कहीं सता रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
तमिलनाडु में किसी भी पक्ष ने 2 कार्यकाल में लगातार सरकार नहीं बनाई है। जयललिता के गुरु एमजी रामचंद्रन ने 30 साल पहले 2 बार लगातार सरकार बनाई थी, तो जयललिता का उद्देश्य उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट है। कई कर्ज माफ करने का वादा किया गया और आइंदा जो भी कर्ज पढ़ाई के लिए लेंगे उनको काम मिलने तक कर्ज सरकार देगी। सुनिए जयललिता ने और कितने वायदे किए हैं। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, मछुआरों के लिए घर दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए मुफ्त मेडिकल चेकअप होगा, मातृत्व भत्ता 12,000 से 18,000 किया जाएगा। ये थे जयललिता के शब्द। इन दोनों पक्षों की प्रतियोगिता में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन क्या इतनी सारे चीज मतदाताओं को देना क्या दिखाता है? हमने ये सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भगवान सिंह से पूछा। उन्होंने कहा,
इट्स अ फ्लड ऑफ फ्रीबीज बाय व्हाट अपीयर्स टू बी अ वेरी डेस्परेट जयललिता, यू नो।
ये मुफ्त की बात है जो सिर्फ निराशा दिखाता है। देखिए, ये घोषणा पत्र उस वक्त आ रहा है जब सर्वे दिखा रहे हैं कि डीएमके कांग्रेस का अलायंस अन्ना डीएमके से आगे चल रहा है। जिन जिलों में बाढ़ आई थी वहां अन्ना डीएमके के मंत्रियों को लोगों ने भगा दिया है। लोग नाराज हैं क्योंकि ये मंत्री बाढ़ के बाद लोगों के पास नहीं गए थे। ये थे भगवान सिंह के शब्द। चुनाव के लिए अभी भी 10 दिन बाकी हैं। किस तरह हवा बदलेगी वो कोई नहीं कह सकता। घोषणा पत्र का असर तभी पता चलेगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो जयललिता ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई मुफ्त सामान की घोषणा की है। रुख दिल्ली का करते हैं, जहां जेएनयू विश्वविद्यालय में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। छात्रों की मांग यह है कि 9 फरवरी के विवादास्पद नारों के मामले में प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। जहां एक ओर एबीवीपी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, वहीं वाम दलों से जुड़े छात्र संगठनों ने भूख हड़ताल को जारी रखा है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते 4 छात्र हड़ताल वापस ले चुके हैं। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की हालत बिगड़ने के चलते उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। छात्रों की जारी हड़ताल के बीच बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने कल जेएनयू वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से बात की। बातचीत का पहला हिस्सा कल आपने सुना, सुनिए ये दूसरा हिस्सा।
स्टूडेंट्स में इतना गुस्सा, इतना रोष और एक साथ इतने सारे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं?
जब हम स्टूडेंट्स थे और आज स्टूडेंट्स का एक डिफरेंस है, ये है टेक्नोलॉजी। अब सोशल मीडिया है, फेसबुक है, विद्यार्थियों के बीच में बहुत डिस्कशन होता है। ये बहुत नेचुरल है एक ओपिनियन फॉर्म करना। आप सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। गुस्सा से फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ये भी नेचुरल है।
लेकिन अभी जैसे कि 9 फरवरी का जो वाक्या हुआ, विवादास्पद नारे लगे जिसको लेकर पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस यहाँ पर आई, सरकार के एक मंत्री ने बोला कि भाई अगर अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में अगर ओसामा बिन लादेन की एनिवर्सरी को लेकर होता है तो वहाँ पर नहीं होगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक मैं कोट पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, वहाँ पर उनके जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टोफर एल आइस ग्रबर, उनका कहना है कि अगर इस तरह का होता है तो हमें टॉलरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर पुलिस को आपने बुलवाया और अरेस्ट हुए, सेडिशन चार्जेस लगे, ये कितना सही है?
फरवरी 9 के बाद भी जेएनयू में कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं किया। जो कमेंट्स आप बता रहे हैं, एवरीबॉडी हैज फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ इनका ओपिनियन जो है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ये इनक्रेज करना है। हम कभी भी हमारा स्टूडेंट्स और हमारा फैकल्टी, हमारा कर्मचारी कोई भी एनकरेज नहीं करेगा जो एक्टिविटी वो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
तो पुलिस को बुलाना यूनिवर्सिटी में एक गलती थी जो कि नहीं होना चाहिए था।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से, लेकिन ये पहले बार ही नए पुलिस जेएनयू में आया। बहुत बार प्रीवियसली भी पुलिस एंटर किया जेएनयू कैंपस में। जो इंसिडेंट आप रेफर कर रहे हैं फरवरी 9 के बाद, ये कुछ केस फाइल किया किसी ने आउटसाइड जेएनयू, और इसके बारे में पुलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए परमिशन मांगा हमारे से, सिर्फ हम वो परमिशन दिया
है ना। हॉस्टल में जाना, लड़कों को उठाना, गिरफ्तारी होना, आपको नहीं लगता था आपको यू शुड हैव पुट योर स्टेप डाउन कि नहीं आप इन्फॉर्मेशन लीजिए लेकिन आप कैंपस के अंदर आपकी लिमिटेशन से आप ये नहीं कर सकते हैं?
हमको कुछ पता नहीं इनका कंपल्शंस क्या है, जो अरेस्ट क्यों किया वो पुलिस ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर लॉ पुलिस आना चाहिए, तो हमको भी कोई पावर नहीं रोकने के लिए। और हम कभी भी पुलिस को हमारा तरफ से हम इनको नए कॉल करेंगे अनलेस एक सिचुएशन अराइज हुआ वो हमारा कंट्रोल में नहीं है।
सर लेकिन कहीं मिस
उस समय में पुलिस को हम बुलाना पड़ेगा। ए स्टैंड मैं पुलिस को भी लिखा कि हम जेएनयू कैंपस में पुलिस को नहीं चाहते हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये ऑटोनमस बॉडी है, जो प्रॉब्लम्स अराइज होगा कैंपस में हम खुद हैंडल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जैसा एनआईटी में हुआ, जैसा एचसीयू में हुआ, तो हमारा सिक्योरिटी इतना प्रिपेयर्ड नहीं है हैंडल करने का, कुछ मॉब वायलेंस होगा। नहीं, हम बुलाए ही नहीं। ऐसी सिचुएशन अराइज करे तो पुलिस का हेल्प लेना पड़ेगा।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विनीत खरे। और अब अखबारों के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है। दिलनवाज पाशा इस काम को बड़ी मुस्तैदी से कर चुके हैं। दिलनवाज, अखबार क्या कह रहे हैं?
जी, आज के अखबारों में उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ में जो कल बारिश आई और उसमें कुछ लोगों की मौत हुई, वही खबरें हैं। वहां से प्रकाशित प्रमुख अखबार नई दुनिया के पहले पन्ने पर गिरे हुए पंडाल की तस्वीर है। अखबार लिखता है, सिंहस्थ में आसमानी आफत। वहीं दैनिक भास्कर लिखता है, सिंहस्थ में तूफान, बारिश से तंबू उखड़े, साधु सहित सात की मौत। एक और खबर जो प्रमुखता से आज के अखबारों में है वो है टैक्सी, जो दिल्ली में डीजल से चलने वाली टैक्सी बंद हुई है उस पर अदालत की टिप्पणी आई है और सरकार ने कहा है इसमें कि कैब के उससे जो बीपीओ उद्योग है उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये जी, ये विदेशी पैसा इससे काफ़ी भारत आता है, काफ़ी बड़ा ये उद्योग है। एक खबर अमर उजाला की, जिसके मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते प्रवेश परीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है। एक द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक ऐसा गांव है जहां पिछले 3 महीने में 80 लोगों ने आत्महत्या की है, और बात आत्महत्या की हो तो एक सूखे का मुद्दा भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है आजकल। सूखे को लेकर बुंदेलखंड के मामले में सियासत हुई है और एक ट्रेन पानी से भरी हुई जो लातूर भेजी गई थी, वैसे ही एक ट्रेन बुंदेलखंड केंद्र सरकार ने भेजी, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया। हिंदुस्तान लिखता है, टकराव, उत्तर प्रदेश को केंद्र से पानी नहीं टैंकर की दरकार।
मेरे पास जो जनसत्ता है इसका इरफान का कार्टून है, इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोटर हमारे हैं तो पानी भी हमारा होगा। हालांकि दो तरह की खबरें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस टैंकर में पानी ही नहीं था।
जी बिल्कुल, ये खबर भी कल रात भर मीडिया में चलती रही। और अब जिक्र करूंगा द हिंदू की एक रिपोर्ट का, जिसके मुताबिक CBI ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिससे संबंधित मामले में इनसे पूछताछ की जाएगी। और एक और खबर जिसका जिक्र करना चाहूंगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ज्वेलरी पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं ली जाएगी, ये खबर भी आज अखबार में है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और अब अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में अव्वल रहे ट्रंप पर ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी।
मंगलवार की शाम से ही न जाने क्यों रिपब्लिकन पार्टी चेहरे पर अंगोछा लपेटकर मुंह छिपाने की नाकाम सी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हाल कुछ वैसा ही है जैसे अपने यहाँ के माँ बाप का होता है जब उनके साहबजादे लड़की छेड़ते हुए या परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। अंदाज कुछ वैसा ही है, इस लड़के ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, क्या जवाब देंगे हम लोगों को, नाक कटवा कर रख दी। जस्ट इनकेस आप भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, मंगलवार की शाम रिपब्लिकन वोटरों ने यह तय कर दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। धूर्त, मक्कार, झूठा, बेईमान, कपटी, बददिमाग, नस्लवादी, लड़कीबाज, व्यभिचारी, पार्टी के सिरमौर और दिग्गजों ने महाराजा ट्रंप के शान में ऐसी कशीदाकारी की थी, अब उनकी शान में परेड करने की मजबूरी आन पड़ी है। वॉशिंगटन में इन दिनों बहार आई हुई है, पेड़ फूलों से लदे हुए हैं, मौसम बसंती सा है, लेकिन इन बिचारों का वश चले तो बर्फीला तूफान ला दें जिससे घर के अंदर दुबक कर बैठे रह सकें। जब कोई कहता है कि आपकी पार्टी तो अब ट्रंप की पार्टी है तो उनमें से कईयों के चेहरे पर वही भाव नजर आता है कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। सेनेटर मार्को रूबियो साहब कतर और इराक के दौरे पर हैं। किसी ने लिखा कि उनके लिए सबसे बड़ा डर ये होगा कि कोई कहीं ये ना पूछ दे कि क्या वाकई आपकी पार्टी ने ट्रंप को चुना है। मीडिया के पंडित भी मुंह छिपा रहे हैं। एक साहब ने लिखा था कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो मैं अपने अखबार का ये कॉलम कागज और स्याही समेत निगल जाऊंगा। अब लोग उन्हें कागज और स्याही के साथ अखबार निगलने की तरकीब बता रहे हैं। एक ने लिखा है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चीज के साथ मिलाकर खा जाओ, एक ने लिखा है कि विस्की के साथ निगल जाओ। वैसे ये सारा कुछ बेवजह है, ट्रंप साहब सीधे साधे हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, इसे कहते हैं पारदर्शी राजनीति। एक महिला रिपोर्टर ने थोड़े तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टर के न जाने कहां कहां से खून निकल रहा था, इशारा माहवारी की तरफ था इसलिए वो वैसे मूड में थी। एक महिला उम्मीदवार के बारे में कहा, उसकी शक्ल देखिए, इसे कोई राष्ट्रपति चुनेगा? जंग में दुश्मन के कैदी रह चुके और बेहद सम्मानित सेनेटर जॉन मैकेन ने उनकी आलोचना की तो ट्रंप का जवाब था, बेवजह लोग उनकी इज्जत करते हैं, मेरे लिए तो वो हीरो है जो जंग में पकड़ा न जाए। पिछले 11-12 महीनों में हर मर्ज का शर्तिया इलाज के जो नुस्खे दिए हैं उन्होंने, वो गाजियाबाद के दीवारों पर लिखे इश्तेहारों से कहीं ज्यादा कारगर हो सकते हैं। पड़ोसी तंग कर रहा है, अपने घर की गंदगी आपकी तरफ फेंक रहा है, ट्रंप बाबा के पास है शर्तिया इलाज और इलाज का पैसा भी पड़ोसी देगा। अपने घर के बाहर बड़ी सी दीवार बना दो और दीवार बनाने का पैसा भी पड़ोसी से लो। कैसे? पहले ट्रंप बाबा के शरण में जाओ तो सही, उन्हें व्हाइट हाउस में पहुंचाओ तो सही, फिर बताएंगे। दोस्त आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके पैसे से ऐश कर रहे हैं और आपको आंखें भी दिखा रहे हैं। ट्रंप बाबा बताएंगे कि कैसे दोस्तों से पैसे लेकर उन्हें ऐश करवाएं, अपनी जेब सलामत रखें और दोस्तों से शुक्रिया भी कहलवाएं। ट्रंप बाबा आपको अपने विरोधियों को धूल चटाने की तरकीब भी सिखा सकते हैं। आखिर 17 विरोधियों को हल्दी चूना कहलवाया है उन्होंने। वो साथ ही ये भी सिखा देंगे कि बाद में वही विरोधी किस तरह आपके गुण गाने लगे। उनके एक विरोधी तो उनकी रैलियों में साथ यूं खड़े रहते हैं जैसे कह रहे हो बस हुक्म करे मेरे आका। एक विरोधी को उन्होंने चाइल्ड मोलेस्टर यानी बच्चा बाज कहा था। सुना है वो इन दिनों ट्रंप के लिए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तलाश कर रहे हैं। ऐसी सियासत सीखने के लिए तो अपने देसी नेता सब कुछ कुर्बान कर दें। अगर आप एड और ब्रांडिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं तो ट्रंप बाबा से बेहतर कोई गुरु नहीं है। उन्होंने अपने विरोधियों की ऐसी ब्रांडिंग की कि वो उससे उबर ही नहीं पाए। झूठा क्रूज, झूठा 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 क्रूज, छोटा रूबियो कम एनर्जी वाला बुश, टेड क्रूज, मार्को रूबियो और जेब बुश पर ये ब्रांड बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक गया। अब तो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अगर सलीकेदार भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे। जाहिर है ट्रंप ऐसा नहीं करने वाले। हिलरी क्लिंटन के खिलाफ उन्होंने अभी से क्रूकेड हिलरी यानी कपटी हिलरी का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया है। और अभी तो 6 महीनों के बाद चुनाव है तो और न जाने क्या क्या कहेंगे। यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की डायरी आप सुन रहे थे। और अब खेल समाचार रजत चांदना से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। आईपीएल 9 में कल दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने दी दिल्ली डेयर डेविल्स को 7 विकेट से मात। पुणे को जीत के लिए 163 रनों की जरूरत थी और सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी शुरुआत दी। रहाणे ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने 27 रन बनाए और तिसारा परेरा ने आते ही 2 छक्के मार के पुणे को जीत तक पहुंचा दिया। पुणे के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली की शुरुआत लेकिन अच्छी नहीं हुई और सलामी बल्लेबाज 48 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद करुण नायर और जेपी डुमी ने पारी को संभाला। नायर ने 32 और जेपी डुमी ने 34 रन बनाए। दिल्ली के लिए कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया और दिल्ली ने 7 विकेट खोकर 162 रनों का स्कोर खड़ा किया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा ने बताया कि बहुत जरूरी जीत थी ये पुणे सुपर जायंट्स के लिए।
बहुत जरूरी थी जीत, जिस तरीके से उनकी परेशानियां बढ़ गई थी, उनके सीनियर खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो रहे थे, स्मिथ, केविन पीटरसन, फैफ डुप्लेसी, थोड़ी बहुत टीम में मजबूती जरूर हुई है। उस्मान ख्वाजा और टीम में आए हैं, जॉर्ज बेली हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 4 नंबर पे बैटिंग करने आए, वो मेरे ख्याल में एक बहुत जरूरी कदम उठाया उन्होंने और आने वाले मैचेस में भी उनको नंबर 4 पे ही बैटिंग करनी होगी।
उधर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक जल्दी ही सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कुक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों से महज 36 रन दूर है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 9,964 रन है और 36 रनों की दूरी कुक श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की पहली पारी में ही पूरी कर सकते हैं। ऐसा करते ही वो 10,000 रनों तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे।
और ये तो खेल समाचार आपको रजत चांदना सुना रहे थे। अब उन खबरों की चर्चा कर लें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का बीते 36 सालों में पहला पूर्ण महासम्मेलन आज से राजधानी प्योंगयांग में शुरू हो रहा है। पहले दिन शासक किम जोंग उन का भाषण ही मुख्य आकर्षण का केंद्र रह सकता है। ब्राजील में राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ पर महाभियोग चलाने की समिति आज इस बात पर मतदान करेगी कि अगले सप्ताह राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाए या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री दोवतोग्लू के पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के इस्तीफे देने की घोषणा के बाद तुर्की के राजनीतिक हालातों पर भी हमारी नजर रहेगी। और सीरिया के बड़े शहर अलप्पो में 48 घंटे के संघर्ष विराम का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
तुर्की सीमा के नजदीक एक सीरियाई राहत कैंप पर हुए हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में भारी बारिश के दौरान पंडाल गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निचले सदन के स्पीकर को निलंबित कर दिया है। वे ही राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ पर महाभियोग चलाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे थे। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का 36 सालों में पहला पूर्ण महासम्मेलन आज से राजधानी प्योंगयांग में शुरू हो रहा है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए करीब 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। और इसराइली लड़ाकू विमानों ने गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।